नहीं हूं, जो आज हूं वो आने वाले कल में नहीं रहूंगा। सृष्टि चक्र में बदलते ही रहना मेरा स्वभाव है और कर्तव्य भी। मेरी गति निरंतर है, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता और न तो वापस बुला सकता है। आप भी मेरे साथ बदलते रहते हैं, लेकिन आप अपने कर्मानुसार जन्म लेने के कारण अपना पुनरावर्तित इतिहास भूल जाते हो, इसीलिए भविष्य के लिए आप चिंतित रहते हैं। इन तीनों कालों के अज्ञान ने आपको उलझन में डाल दिया है, इसी कारण अपना वर्तमान भी व्यर्थ गवा रहे हैं। मैं बीते हुए कल में सुवर्ण युग था और आने वाले कल के लिए भी सुवर्ण युग बनने जा रहा। मैंने तो कल की तैयारी भी कर ली है, आखिर मैं सृष्टि चक्र में जो बता हुआ हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए, क्योंकि जो मेरे साथ चलता रहता है वही महान है। अब मैं जल्दी ही बदलने वाला हूँ, इसीलिए आज मैं उस महान आत्माओं को ढूंढने आया हूँ जो मेरे साथ चलना चाहते हैं। आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए कि मैं कहीं आप स्वयं तो नहीं है। अगर है तो आप भी मेरे साथ चलिए बदलने के लिए। मैं तो बस आपको सावधान करने आया था, अब मैं तो चला थोड़ी सी तैयारी के बाद। अच्छा सुबह
नारायण। महाराज आज मेरा मन बहुत व्यथित है, मैं कहीं चैन से बैठ नहीं सकता।
क्या बात है नारद जी, क्या कोई अनहोनी हो गई है क्या?
मैं अभी मृत्यु लोक का चक्कर लगाकर आ रहा हूँ। मृत्यु लोक के मनुष्यों की दशा देखकर मैं बड़ा दुखी हूँ। मृत्यु लोक में प्रत्येक मनुष्य बड़ा दुखी और अशांत है।
ये आप क्या कह रहे हैं नारद जी?
जी महाराज, इन लोगों का दुख देखकर मेरा हृदय करुणामय हो गया है।
अच्छा, तो मृत्यु लोक में जो मनुष्य दुखी हैं, उन्हें दुख से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें स्वर्ग में लाना बहुत ही जरूरी है।
अगर आप आज्ञा दी तो उन लोगों को ऐसी दुर्दशा में से बाहर निकालकर स्वर्ग में लाने का प्रयत्न करके देखूं। मुझे उम्मीद है कि संसार के सभी मनुष्य मेरे साथ स्वर्ग में आने के लिए तैयार हो जाएंगे।
भले मुनिवर, अगर उन लोगों के लिए आपके मन में शुभ भावना है तो मृत्यु लोक में से एक मनुष्य को जरूर लेकर आओ, क्योंकि स्वर्ग में मेरे पास सिर्फ एक ही सीट खाली है।
नारायण नारायण। खाली है, जल्दी कीजिए वो भी भरने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी भरने वाली है। लोगों देखो स्वर्ग में एक ही सीट खाली है, जल्दी कीजिए वो भी भरने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी भरने वाली है। चलो बुलावा आया है, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है, सुख से भरा निमंत्रण है, मंगल मैला मंत्र है। चलो बुलावा आया है, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है, सुख से भरा निमंत्रण है, मंगलमय आमंत्रण है। बच्चों को बच्चों को एक घड़ी लौटना आने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी जाने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी जाने वाली है। लोगों देखो स्वर्ग में एक सीट खाली है, जल्दी कीजिए वो भी भरने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी भरने वाली है। का मरण हुआ, राम कतब अवतरण हुआ, नैतिकता का मरण हुआ, राम कतब अवतरण हुआ, रावण के शतवाटिका में सीता का अपहरण हुआ। नैतिकता का मरण हुआ, राम कतब अवतरण हुआ, रावण के शतवाटिका में सीता का अपहरण हुआ। सोने की हो सोने की लंका तब तो जलने वाली है, जल्दी कीजिए लंका जलने वाली है, जल्दी कीजिए लंका जलने वाली है। लाट चलेगा बंजारा, छोड़ो काम की मस्ती को, छोड़ो क्रोध की हस्ती को, छोड़ो काम की मस्ती को, छोड़ो क्रोध की हस्ती को, लोभ मोह की बस्ती को, अहंकार की गति को, छोड़ो काम की मस्ती को, छोड़ो क्रोध की हस्ती को, लोभ मोह की बस्ती को, अहंकार की गति को।
स्वर्ग से खाली है।
हेलो, हाँ शेख करोड़ी मैं बोल रहा हूँ। क्या कहा, 5,000 पैकेज चाहिए? अरे मिल जाएंगे सेठ जी, क्यों नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं नहीं सेठ जी, भाव तो वही रहेगा। नहीं नहीं, एक पैसा काम नहीं, आपको चाहिए तो बोलो। हाँ ये हुई ना बात। हाँ आज शाम को ही पहुंच जाएगा आपका माल, ठीक है, ओके। मुनीम को अंदर भेजो।
जी सर जी।
मुनीम जी, ये कलकत्ता की रौनक एंड कंपनी के माल की डिलीवरी हुई कि नहीं?
हाँ जी, 50 किलो के 10 पैकेट की डिलीवरी आज सुबह ही हो गई।
हाँ ठीक है। और ये मुंबई की किकानी इंडस्ट्रीज के 5 लाख का चेक आने वाला था, उसका पेमेंट आया कि नहीं?
जी, पर किकानी इंडस्ट्री का पेमेंट तो अभी तक नहीं आया है।
अभी तक पेमेंट नहीं आया? सुनो, फिर आज दोपहर को 2 बजे तक अगर पेमेंट नहीं आता है ना, तो उनके बाकी के पेमेंट पे 5% बढ़ा दो और नोटिस भेज दो।
जी समझे।
और दूसरी बात, वो क्या रह गया है, हाँ वो अहमदाबाद में है ना, माणिकचंद एंड माणिकचंद कंपनी, उसके माल का ऑर्डर क्या हुआ?
हाँ, अहमदाबाद की माणिकचंद एंड माणिकचंद कंपनी का ऑर्डर ताज मिल गया हमें कैश पर।
ठीक है, तुम जल्दी से पैकिंग करवा दो, किंतु जरा ध्यान से समझो, मिर्च के 500 पैकेट में 200 पैकेट कौन से, वे अपने पीछे वाले गोडाउन में से, अरे वो ईंटों के पाउडर में से जो बनाते हैं मिर्च, वो वाले मिला देना, और नमकीन के 1,000 पैकेट में वो बाजू वाले गोडाउन में, अरे वो जो लकड़ी तेल से हम माल बनाते हैं ना, उसी के 400 पैकेट को मिला देना। ध्यान रखना, आजकल किस पर विश्वास रखने जैसा नहीं है, समझे? जाओ।
जी सर जी। नारायण नारायण।
आप कौन है?
मैं नारद जी हूँ, शेख करोड़ी मल जी, मैं देवलोक से आया हूँ।
नारद जी आप पधारिए पधारिए मुनिराज, आप सही समय पर आए हैं, किंतु आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना।
शुक्रिया, लेकिन मैं अभी बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपके लिए एक शुभ समाचार लेके आया हूँ। ये समाचार आप सुनोगे तो खुशी से जो उठोगे, लेकिन आप इतने परेशान क्यों हैं? आप तो इतने बड़े सेठ हैं, इतना बड़ा कारोबार है आपका, फिर आप दुखी क्यों हैं?
तारक जी, पैसा वैसा भी अच्छा है, धंधा भी अच्छा खासा चल रहा है, लाखों का नहीं करोड़ों का हिसाब है, किंतु मन को चैन नहीं है। महिलाओं की समस्या बढ़ती ही जा रही है। सेठ जी, अब आपकी सर्व समस्याओं का समाधान हो गया ही समझो, मैं आपको सर्व समस्याओं से मुक्त करने के लिए ही आया हूँ।
अच्छा, शुभ समाचार, क्या देवलोक से आप मेरे लिए बड़ा ऑर्डर लेकर आए हैं क्या?
सेठ जी, आप पूरी जिंदगी धंधे की बातें ही सोचोगे क्या? मैं आपके सामने स्वर्ग की बात लेकर आया हूँ।
सेठ जी,
स्वयं धर्मराज महाराज ने आपको स्वर्ग के योग्य समझकर स्वर्ग में पधारने का निमंत्रण दिया है। ये निमंत्रण देने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, इसलिए आप देर ना करते हुए मेरे साथ स्वर्ग में आने के लिए तैयार हो जाइए।
हाँ, मैं स्वर्ग में आता जरूर, लेकिन किंतु
लेकिन क्या बात है, आप सर्व समस्याओं से छुटकारा नहीं पाना चाहते?
निराज, मैं स्वर्ग में आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है।
शर्त? स्वर्ग में आने के लिए शर्त? पहली बार ऐसा सुना है, फिर भी कहिए क्या शर्त है आपकी?
निराज, आप मुझे स्वर्ग और नर्क जहाँ पे मिलते हैं ना, जहाँ पे संबंध होता है ना, वहीं पे बड़ी सी ऑफिस दिला दो ना, तो मैं स्वर्ग में आने के लिए तैयार हूँ। इस ऑफिस से मैं स्वर्ग का माल नर्क और नर्क का माल स्वर्ग में भेजूंगा। यानी कि आपको मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था करके देनी होगी।
हाँ,
तो मैं स्वर्ग में आने के लिए तैयार हूँ।
नारायण नारायण, स्वर्ग में आप मालिक बन जाएंगे मालिक, संपूर्ण सुख अपने आप ही मिलेगा, संपूर्ण शांति होगी वहां। और हां सेठ जी, स्वर्ग में आपको पैसे कमाने के लिए ऐसी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ना ही से बुरे कर्म करने की जरूरत। स्वर्ग में आने का मौका किसी भाग्यशाली को ही मिलता है, जहां देवी देवताएं रहते हैं।
नारद जी, इस बार आप मुझे माफी कर दें तो अच्छा है।
सेठ जी, मेरी बात मानिए, सावधान हो जाइए, शरीर छूटने के बाद ये धन दौलत आपके साथ नहीं आने वाले, बल्कि पाप कर्म व पुण्य कर्म ही संस्कार के रूप में साथ आने वाले हैं। मेरी बात मान ली, पुण्य का खाता जमा दीजिए तो अनेक जन्म के लिए आप सुखी हो जाएंगे। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान ली और ये स्वर्ग में आने का प्रस्ताव स्वीकार कीजिए।
नारद जी, एक बार मैंने आपको बता दिया ना कि मुझे आपके स्वर्ग में नहीं आना है, ऐसा नहीं आना है। अरे, यहाँ मेरे बच्चे की जान खतरे में और आपको स्वर्ग में आने की पड़ी है, जाइए यहाँ से। नमस्कार।
हर्ष, जान छूटी।
जान चलन लाओ, चलन जान की सब जरूरत है, सुबह से कुछ नहीं पिया है।
लेकिन गुरु महाराज, आज तो माल ही खत्म है।
क्या कहो, गांजा खत्म हो गया? अरे, पिछले हफ्ते तो माल मंगवाया था हमने। तुम लोग जरूर कोई गड़बड़ कर रहे हो। हेलो, वो लकड़ना कहा गया? मैंने उसे पैसे दिए थे सुबह माल लाने के लिए, कहां मर गया लकड़नाथ?
गुरुदेव, अभी अभी समाचार मिला है कि लक्कड़नाथ को पकड़ने के लिए पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई।
मरने दे उस लक्कड़नाथ के बच्चे को। पर क्या करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? जाओ कहीं से भी कहा जाने के आओ, कम से कम तीन चार जलन तो होनी चाहिए अभी। जाओ, क्या करे क्या करे, पैर दबा दे रहे, पैर इधर इधर हाथ दबा दे रहे, हाथ दबाओ पैर दबाओ, सब दुखड़ा दे रहा। हे भगवान, कैसे चैने दिए मुझे, कोई बात समझ रही है? हे भगवान, बचाए लोगों से बचा मुझे। हे भगवान, इस संसार से मुक्ति दे दे, मुक्ति दे दे मुझे।
देखो, आएंगे हमारे आश्रम में, किसी तरह की गड़बड़ी हो नहीं पाए। समझे? प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। अरे सेठ जी, आपके लिए हमारे आश्रम के द्वार हमेशा खुले, बोलिए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी?
वो तो सब ठीक है गुरुदेव, किंतु मैं एक समाचार लेकर आया।
समाचार?
हाँ,
बोलिए
गुरुदेव। मेरे बड़े भाई शेख अभी तुमको कुछ दिन पहले आपने जो जड़ी बूटी दी थी, उससे वे बिल्कुल ठीक हो गए थे, किंतु आज सुबह दोबारा उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, क्योंकि उनको लकवा का असर हुआ है। कृपया आप ऐसी जड़ी बूटी दे ताकि
मेरे बड़े भाई दोबारा ठीक हो जाए।
क्या कहा? शेठ जी को लखवाऊंगा, लेकिन ये कैसा हो सकता है?
हाँ मैं सच कह रहा हूँ गुरुदेव, आज सुबह जब वे नाश्ता करने के लिए बैठने गए तो वे अचानक गिर पड़े और उनकी ऐसी गंभीर हालत को देखते हुए जब अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें लकवा हो गया है।
लेकिन हमारी जड़ी बूटी से कई दर्दियों का इलाज किया आज तक हमने, आज तक किसी को सजा नहीं आई।
देखो धर्मानंद जी, अभी मेरे बड़े भाई की हालत काफी गंभीर है, मेरे पास बहस करने का समय नहीं है, कृपया आप जल्दी से मेरे साथ चलें, आखिर मुझे मेरे भाई को भी संभालना है, कृपया मेरे साथ चलें।
जाइए आप जाइए, हम सीधे अस्पताल पहुंचते हैं।
ठीक है, किंतु जल्दी आना, मैं चलता हूँ, प्रणाम।
नारायण नारायण।
नाराजी आप आइए, बताइए, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए।
नारायण नारायण, सुखी रहो।
आइए पधारिए, काफी समय से आपके दर्शन की अभिलाषा थी, आज आपके दर्शन हुए, धन्य हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया। आपके दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है, कहिए वो क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी, आइए स्थान ग्रहण कीजिए।
नारायण नारायण। महात्मा, मैं आपको इस मृत्यु लोक के आश्रम में नहीं स्वर्ग में ले जाने के लिए आया हूँ, जिसे पाने के लिए आप सब कुछ छोड़कर सन्यासी बने हुए हैं। वहाँ स्वर्ग में स्वयं धर्मराज ने आपको स्वर्ग के योग्य समझकर पधारने का निमंत्रण दिया है, इसलिए आप मेरे साथ आने के लिए जल्दी तैयार हो जाइए, क्योंकि स्वर्ग में एक ही सीट खाली है।
सचमुच खुशी के समाचार है मुनिवर, लेकिन मुझे क्षमा करें, मैं आपके साथ स्वर्ग में नहीं आ सकता।
क्यों, क्या बात है, कोई समस्या है क्या?
नहीं नारद जी, इस बार मुझे क्षमा कीजिए, मैं आश्रम के लिए बड़ा मकान बना लूं, दो चार ग्रंथों की रचना कर लूं, थोड़ा इस दुनिया में मान पान प्राप्त कर लूं, और उसके बाद ये सब सारा हमारे शिष्यों के नाम करके निवृत्त हो जाऊंगा, उसके बाद मैं आपके साथ चलूंगा, अभी नहीं।
अरे कमाल कर रहे हैं, घर आए स्वर्ग को ठोकर लगा रहे हैं।
नहीं, इस बार मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अभी कई सारे कार्य करने बाकी है।
नारायण नारायण, अगर आप मेरी बात मानोगे तो आपकी जन्म जन्म की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। वहाँ ये आश्रम तो क्या सुखमय सुंदर और मनोरम दुनिया में आप सुखी हो जाएंगे, ऐसा सुनहरा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी कीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि स्वर्ग में एक ही सीट खाली है।
अरे मैंने एक बार कहा ना, मुझे आपके स्वर्ग में नहीं आना है, मेरे लिए तो मेरा आश्रम ही मेरा स्वर्ग है, जब तक मैं मेरे आश्रम को स्वर्ग नहीं बना दूंगा तब तक मैं ये आश्रम छोड़ के नहीं जा सकता। खबरदार, स्वर्ग के बारे में मुझे एक शब्द भी मत कहना, एक तो यह मुसीबत खड़ी हुई है और आपको आपको आपके स्वर्ग की पड़ी है, जाइए यहां से, जाइए जाइए यहां से, वरना
जैसी आपकी मर्जी। नारायण नारायण।
हाय नरेश। हेलो मुकेश।
हाय। हाय रीना,
तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, आज कोई नई मैडम का लेक्चर है क्या कॉलेज में?
अरे नहीं यार, एग्जाम में सीट फिक्स करवाने आए थे।
आज शाम को पार्टी या लेक्चर है या नहीं?
है, है क्यों नहीं, रॉयल पैलेस होटल रात को 9 बजे, लेकिन अभी तुम जाओ, हम लोग एक काम निपटा के तुम्हें मिलते हैं।
नए पंछी की टिकट कटवानी है ना, इसलिए। ओके बाय
बाय।
कहाँ भाग रहे हो तुम दोनों, लगता है पुलिस को आते हुए देखकर भाग रहे हो।
देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम कोई भागने वालों में से नहीं है, हमें क्या फर्क पड़ता है हमारे सामने कोई भी आए।
तुम दोनों ने जिस प्रोफेसर पे खूनी हमला किया था और कॉलेज में लड़कियों की छेड़खाने की थी, इसके प्रूफ भी मुझे मिल गए हैं और साक्षी भी, इसलिए तुम्हें अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, तुम्हें जो भी कहना है वो पुलिस स्टेशन में आके कहना।
देखें इंस्पेक्टर साहब, अब बहुत हो चुका। आपने अगर हमें हाथ भी लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। और मान लीजिए कि आपकी बात सच्ची है तो क्या है, आपके पास अरेस्ट वारंट है? नहीं है ना, तो पहले अरेस्ट वारंट लेकर आइए, बाद में हमें पकड़ना।
और हाँ, हमें धमकाने की कोशिश मत कीजिए, जाइए पहले वारंट की तैयारी कीजिए, बाद में अपना पावर दिखाना, समझे?
ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना दोनों की बदमाशी मैं चलने नहीं दूंगा।
अरे क्या कर रहे यार, देखते चला रहे नारायण नारायण। अरे क्या बात है, अरे देख हेयर स्टाइल तो देख बहुत बढ़िया बनाई है। अरे क्या बात है, और ये क्या है बैंड बाजा, नारायण नारायण। आप तो नारायण नारायण ऐसे कर दो जैसे आप नारायण जी के चेले हो।
मैं चेला नहीं, मैं खुद नारायण हूँ, मैं देवलोक से आया हूँ।
क्या बात करके भारत बाजा हो,
नारायण 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 नारायण।
आप मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो देवलोक में होना चाहिए।
मैं देवलोक से आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूँ, आप मेरे साथ देवलोक में आओ, जल्दी कीजिए, तैयार हो जाइए, स्वर्ग में एक ही सीट खाली है।
स्वर्ग में एक सीट खाली है?
हाँ।
अरे वो राजेश खन्ना वाली फिल्म है स्वर्ग?
हाँ।
वो तो बहुत पुरानी फिल्म है, उसमें कैसे एक सीट खाली हो सकती है?
अरे बाबा आजकल नई फिल्मों में तो हाउसफुल होता है, हाउसफुल।
और देखिए एक सीट से हमें क्या करना, हम तो दो आदमी हैं तो दो सीट चाहिए, और अगर आप टिकट ब्लैक में देना चाहते हैं ना तो हम ब्लैक में भी ले लेंगे।
मैं वो स्वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो स्वर्ग की बात कर रहा हूँ जहाँ स्वयं देवता देवियां और परियां रहती है, और स्वयं धर्मराज महाराज ने आपको स्वर्ग के योग्य समझकर वहां पधारने का निमंत्रण दिया है, इसलिए आप मेरे साथ स्वर्ग में आइए, वरना ऐसा सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल जाएगा।
बहुत यार, नारद बाबा आप स्वर्ग की सीट की बात कर रहे हैं ना, तो आप एक काम कीजिए, वो सीट किसी भूखे आदमी को दे दीजिए। आप ही बताइए, अभी हमारी उम्र है स्वर्ग में जाने की? अरे अभी तो हम जवान हैं, बहुत कुछ करना बाकी है।
अरे अभी तो हम डिग्री लेंगे, पैसा कमाएंगे, ऐश करेंगे, शादी करेंगे, अरे बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे, बड़ा करेंगे, फिर जब हमें ऐसा लगेगा कि हमारी उम्र हो गई है तो हम जरूर आपके पास आएंगे। अभी हमें माफ कीजिए बाबा, सॉरी बाबा।
बच्चों ध्यान में रखो, इंसान छोटा हो या बड़ा, बुरा हो या जवान, काल किसी को नहीं छोड़ता, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, मौत और मुसीबत किसी को पूछ के नहीं आती, काल का चक्र ही ऐसा है। मेरी बात मानो, अपनी युवा अवस्था को इस तरह बर्बाद मत करो, नरक में मत डालो। अगर मेरे साथ चलोगे तो मैं आपको युवा अवस्था में भी स्वर्ग में स्थान दिला दूंगा।
नारद बाबा, स्वर्ग में मैं हीरो बन सकूंगा? साथ में अच्छी सी हीरोइन हो, जेब में कैश हो, फाइव स्टार होटल हो, हाथ में बियर की बोतल हो, तो हमारे लिए तो यहाँ पे स्वर्ग ही स्वर्ग है। देखो नारद बाबा, हम लोग चारों ओर हमारा धाक जमाना चाहते हैं।
अरे बच्चों, ये कौन सी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो? खराब संगत में फंसोगे तो शिक्षण जगत को भी बदनाम करोगे। जीवन को सुधारने के लिए थोड़ा चारित्रशील बनो, थोड़ा तो सुशील बनो।
देखिए नारद बाबा, एक तो पुलिस हमारे पीछे पड़ी है और आप भी हमारे पीछे पड़ गए, अरे हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। नारद बाबा, किसी न किसी को स्वर्ग में ले जाने का आपको इतना ही शौक है तो हम आपके पास उन्हें भेज देते जो हमारा साक्षी बनकर, हमारी मुसीबत बनकर खड़ा हो गया है।
देखिए नारद बाबा, हमारे इलाके में लोग हमसे डरते हैं, अरे पुलिस भी हमें नहीं पकड़ सकती, इंस्पेक्टर को भी अभी हमने भगा दिया। देखो हम हमारा यहाँ पे चारों ओर रौब जमाना चाहते, रौब बस चारों ओर हमारा रौब हो जाए, हमारा नाम सुनते लोग डरने लगे, हमारा नाम सुनते हमारा काम हो जाए, नाम हो जाए नाम, बस उसके बाद स्वर्ग के बारे में सोचेंगे।
नारद बाबा
हाँ,
आपको स्वर्ग के लिए एक ही चाहिए ना
हाँ।
तो आश्रम हम भेज देते हैं उन्हें आपके पास, वो सीधा ही आपको स्वर्ग में मिलेगा
हाँ।
आपको ढूंढने की जरा भी जरूरत नहीं है हाँ, क्योंकि आपको तो स्वर्ग के लिए एक सीट वाला तो मिल जाएगा हाँ। और अगर ज्यादा की जरूरत पड़े तो हमें बता देना, हम है ना। ओके बाय नारद बाबा बाय।
नारायण नारायण, क्या हाल हो गया इस युवाओं का। युवा तो देश की नींव माने जाते हैं और ये नींव ही कितनी जर्जरित है। क्या होगा इस दुनिया का। चलो किसी और जगह का प्रयत्न करता हूं, क्योंकि किसी ना किसी को तो ले जाना ही है स्वर्ग में। नारायण नारायण।
लिखिए ये फाइल संभालिए। अरे राकेश भाई, खाली पेट तो भगवान का भजन भी नहीं हो सकता। आप तो जानते हो महंगाई कितनी बढ़ गई है हाँ। बीवी बच्चों का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, कंप्यूटर एजुकेशन का खर्चा, और आजकल तो मंदिर में भी प्रसाद चढ़ाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अब इतना सब कुछ इतने कम तनख्वाह में कैसे कर पाऊंगा। राकेश भाई आप एक काम कर दीजिए, इस फाइल पर थोड़ा सा वजन रख ही दीजिए, बस यूं समझिए आपका काम हो ही गया।
अरे साहब आप तो इसी बात पे नाराज हो गए। मैं भी सोचता था बिना वजन फाइल टेबल पर कैसे रहेगी। इसलिए वजन साथ में लेकर आया इस बार, बाकी के पैसे काम हो जाने के बाद तुरंत दे दूंगा।
वाह राकेश भाई वाह,
ये भी तो आपने लगाया है ना, कर्मणे वाहिका रस्ते। वो तो समझा था साहब, आप तो काफी समझदार निकले। अब आप देखिए कि आपकी फाइल कैसे तोड़ती है, आपका काम फटाफट हो जाएगा। बस यूं समझिए कि आपका काम हो गया।
धन्यवाद साहब।
अच्छा साहब मैं चलो।
ओके
आप यहाँ पर हैं। मेरा प्रणाम मुनिराज।
सनत कुमार जी कैसे हैं आप, सब कुशल मंगल तो है ना।
सब कुशल मंगल है। आप यहाँ पधारे, मैं तो धन्य धन्य हो गया। मेरा अहोभाग्य कि आपके दर्शन हो गए।
नारायण नारायण। बेटा तेरा बड़ा भाग्य है कि मैं तेरे लिए बड़ा ही खुशी का समाचार लेकर आया हूँ।
खुशी का समाचार, और मेरे लिए।
जी हाँ, स्वयं धर्मराज ने आपको स्वर्ग के योग्य समझकर आपको स्वर्ग में पधारने का निमंत्रण दिया है, और आपको वहाँ ले जाने के लिए मुझे आपके पास भेजा है। तो देर मत कीजिए, जल्दी कीजिए, क्योंकि स्वर्ग में एक ही सीट खाली है।
मुनिराज मैं आपके साथ स्वर्ग में आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपके साथ स्वर्ग में आऊंगा तो फिर मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। मुनिराज मैं बहुत बुरी आदतों से भरपूर हूँ, दम का रोगी हूँ, मुझे डायबिटीज भी है, और मेरे घर वाले मुझे रोज दारू पीने से मना करते हैं, तो मैं दारू छोड़ ही नहीं सकता। मुनिराज पहले आप मुझे दम के रोग से तो मुक्ति दिलवाइए।
ना हो रहा है ना हो रहा है।
ओके डन पक्का, मैं आपके साथ स्वर्ग में जरूर आऊंगा, लेकिन आज तो लेडीज फर्स्ट का जमाना है। पहले मैं अपनी बीवी को पूछ के लू कि मैं तुम्हारे बिना अकेले स्वर्ग में जा सकता हूँ या नहीं।
इस बार तो आपने कमाल कर दिया, कमाल का भाषण दिया है, और आपने देश के नाम पे तो हमारा भला कर ही दिया। मालिक देश की गरीबी दूर हो या ना हो, हमारी गरीबी आई मीन हम तो पैसे वाले हो ही जाएंगे।
हाँ वो तो है ही पलटूराम जी, हम पैसे वाले तो जरूर हो जाएंगे। खैर छोड़ो इस सब पर, पहले ये बताओ ये इलेक्शन की तैयारी सब कहां तक पहुंची है, मतलब सब बंदोबस्त हो गया है ना। देखो भाई साहब, इस बार ये बाजी अपने हाथ से जा नहीं देता है, चाहे कुछ भी हो जाए ये इलेक्शन हम जरूर जीतेंगे।
मालिक आप बेफिक्र रहिए, इस बार तो मैंने खाने का पीने का और बोगस वोटिंग का पूरा इंतजाम
किया। नारायण नारायण।
अरे भाई ये कोई नौटंकी वाला आ गया यार।
नारायण नारायण।
नेताजी मैं नारायण हूँ, मैं देवलोक से आया हूँ।
अच्छा 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 अच्छा, तो आप वो देव बने वाले नारद जी हैं।
नमस्कार नारद जी,
देवलोक में आजकल राजकाट में क्या चल रहा है?
नारायण नारायण,
देवलोक में सब कुशल मंगल है।
लेकिन सेवक राम जी,
आप बताइए कैसे हैं आप?
अरे मुनिवर, हम क्या बताएं, बस हमें आपके दर्शन किए मानो हमारे भाग्य खुल गए।
नेताजी, भाग्य तो आपका खुलने वाला है, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता भगवान आपका भाग्य बनाने के लिए बैठे हैं।
इसलिए हम आपके लिए एक शुभ संदेश लेके आए हैं।
क्या कह रहे हैं मुनिवर? तो फिर मैं इलेक्शन जरूर जीत जाऊंगा। आप जरूर यही शुभ समाचार लेके आए हैं ना
नेताजी? इस संसार के चुनाव में हार जीत तो चलती ही रहेगी और नेतागिरी भी।
तो फिर क्या शुभ समाचार है? कोई बड़ा चांस है क्या मैं कैबिनेट मिनिस्टर बन जाऊंगा?
इससे भी बड़ा और सुनहरा मौका है आपके लिए। स्वयं धर्मराज महाराज ने स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने के लिए आपको चुना है,
इसलिए बिना देर किए तैयार हो जाइए। स्वर्ग में एक ही सीट खाली है।
क्या कह रहे हैं मुनि? स्वर्ग में सिर्फ एक ही सीट बाकी है? ये तो बहुत बड़ा चांस है। देखिए मुनिवर, स्वर्ग में जाना कौन पसंद नहीं करेगा? मैं स्वर्ग में जरूर रहता, लेकिन वो बात यह है कि
क्या बात है सेवक राम जी?
मुनिवर, अभी मेरे सर पर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ता है, बहुत सारे लोगों का काम करना पड़ता है। एक बार राष्ट्र नेता बन जाऊं और सब लोगों की सेवा कर लूं, बस खत्म। इन सबसे छुट्टी लेकर स्वर्ग में ही आ जाना है। और देखिए, मैं वादे का बहुत पक्का हूं, लेकिन अभी मुझे माफ कीजिए, अभी मैं आपके साथ नहीं आ सकता।
लेकिन अभी तो आप पूरे देश को स्वर्ग बनाने की बातें कर रहे थे ना?
वास्तव में सच बात तो यह है गुरुवर, कि सबसे पहले मैं अपने मकान को स्वर्ग से भी आलिशान बना लूं। फिर देश की बात तो है ही
नेताजी, स्वर्ग का अर्थ सिर्फ धन दौलत नहीं है। स्वर्ग तो उसे कहा जाता है जहां सर्व गुणों से संपन्न होकर सर्व के सहयोगी हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सदा खुशहाल रहते हो। इस तरह पूरे विश्व में राम राज्य लाने का कार्य तो पूरे विश्व के बापू जी भगवान शिव ही कर सकते हैं।
मुनिवर, लेकिन इतना बड़ा नियम मैं अकेले कैसे ले सकता? हाँ, मैं अपने पार्टी हाईकमान को पूछ कर आपको बताऊंगा। और मैं अकेला स्वर्ग में आऊं तो फिर मेरी पार्टी और मेरे साथियों का क्या होगा? और फिर मैं अकेला स्वर्ग में आऊं, ये अच्छा नहीं लगता, ये पार्टी कहलाएगा।
देखिए सेवक राम जी, स्वर्ग में जाने के वक्त कोई किसी का साथ नहीं निभाता। पहले आप स्वर्ग में आइए, अगर आप आएंगे तो आप अपने मित्रों संबंधियों को भी स्वर्ग में बुला सकेंगे।
लेकिन मुनिवर, मैं ही पहले थे,
इसलिए कि आप भाग्यशाली हैं और भगवान ने आपको ही पहला मौका दिया है।
नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।
मेरी बात मानिए, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, स्वर्ग में एक ही सीट खाली है।
देखिए, अभी मेरे पास वक्त नहीं आपके साथ स्वर्ग में आने का। आप यहां से जा सकते, आप जाइए यहां से, आप जाइए यहां से, बस।
अरे भैया पलटू राम, पलटू राम, अरे पलटू राम, आगो भैया। सर सर, मैं कहां हूं? जहां पहले थे वहीं हूं।
वो तो ठीक है सर, पर मैं तो सीधे स्वर्ग में चला गया था।
कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, अब सीधे धरती पे आ जाओ। पर आगे भी सोचो, इलेक्शन में क्या करना है, स्वर्ग का मत सोचो, इलेक्शन का सोचो भैया।
कहां मर गई, क्या कर रही हो तुम? पूरा दिन साथ सदगे में लगी रहती हो,
नहीं माँ जी, अभी भी शादी की बहुत तैयारी बाकी है, वही तो कह रही हूँ। बोलिए क्या बात है?
अच्छा अच्छा, मेरे लाडले की शादी की तैयारियां भी पड़ी हो तुम? लेकिन मेरे लिए कुछ सोचा है कि नहीं? बाजार से मेरी लखनऊ की साड़ियां लाई कि नहीं लाई तुम? तुम नहीं लाई हो तो किसको बेच के तुम मंगा लो? तनिक मैं लल्ला का दर्शन करके आती हूँ।
जी माँ जी, मैं खुद जाकर आपके लिए साड़ियां मंगवाती हूँ।
अच्छी बात है।
अरे भगवान, क्या जमाना आया है, इसी बुढ़ापे में जवानी आई है। अच्छा वो अभी मंदिर चली गई, इस बला से कम एक घंटा तो आराम मिलेगा।
हे भगवान, अब तो तू मुझे उठा ले, प्रार्थना करते करते मैं अब थक गई हूँ। घर में भी कितने झगड़े होते रहते हैं, आंखों से मुझे दिखाई नहीं देता, दांतों से मैं खाना नहीं खा सकती हूँ, लकड़ी के बगैर मैं चल नहीं सकती हूँ। भगवान अब तो तू मुझे उठा ले भगवान, इस कलयुग से मुझे ले ले। हे श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम।
नारायण नारायण, लगता है ये वृद्धा अपनी जिंदगी से पूरी तरह थक चुकी है, ये मेरे साथ स्वर्ग में आने के लिए तैयार हो जाएगी, शायद मेरा काम बन गया। नारायण नारायण।
आप कौन?
नारायण नारायण, जय श्री कृष्ण माता जी।
जय श्री कृष्ण, लेकिन आप कौन?
मैं नारद माता।
नानक जी?
नारायण।
स्वयं आप?
हाँ।
मैं तो धन्य हो गई, आपके दर्शन करके मैं तो धन्य धन्य हो गई, मेरे पूर्व जन्म का पुण्योदय हो गया महाराज।
अब आपकी तबीयत कैसी है माता?
तबीयत क्या खास ठीक है, लेकिन आपने इस लोक में आने की तकलीफ क्यों की?
नारायण नारायण, मैं धर्मराज महाराज की ओर से आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूँ, ये संदेश सुन के आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और आप खुशी से झूम उठेगी।
धर्मराज महाराज की ओर से मेरे लिए संदेश लाए हैं, कैसे बताएंगे?
माता जी, अब आपके दुखों का अंत आ गया समझो, क्योंकि आप बड़े भाग्यशाली है, अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों के बाद किसी को ही ऐसा मौका मिलता है, इसलिए जल्दी तैयार हो जाइए।
अच्छा तो आप मुझे स्वर्ग में ले जाने के लिए आए हैं? स्वर्ग में आना किसको पसंद नहीं है, लेकिन अभी मेरे को वहाँ बहुत काम करने बाकी है, अभी मैं स्वर्ग में नहीं आ सकती।
अरे माता जी, अब आपको इस उम्र में क्या काम करना बाकी है, अब तो आप संसार सागर के किनारे से पहुँच चुकी है।
भारत जी, अगले हफ्ते मेरे पोते की शादी होने वाली है और दहेज में तगड़ी रकम मिलने वाली है, पता नहीं और क्या क्या मिलने वाला है। मेरे लड़के ने ये शादी में बहुत खर्चा किया है।
लेकिन माता जी, ऐसी दुनियादारी के कार्य तो होते ही रहेंगे, लेकिन स्वर्ग में आने का ऐसा सुनहरा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा।
लेकिन आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? इतनी बड़ी दुनिया है, किसको भी पकड़ लेने। मैंने एक दफा बोल दिया ने, स्वर्ग में मेरे को नहीं आना है, बस नहीं आना है।
लेकिन अभी तो आप कह रहे थे ना कि हे भगवान, मुझे स्वर्ग में बुला लो, मुझे स्वर्ग में बुला लो, तो मान लीजिए भगवान ने आपकी बात सुन ली और स्वर्ग में आपको पधारने का निमंत्रण दे दिया, फिर क्या बात है, चलिए तैयार हो जाइए।
अरे नारद, तुम कैसी बात कर रहे हो? एक तरफ मेरे पोते की शादी है, इतना बड़ा अवसर है, और तुम स्वर्ग में आने की बात कर रहे हो? मुझे नहीं आना है तेरे स्वर्ग में, तेरे स्वर्ग की तो ऐसी की कैसी है।
नारायण नारायण, ये वृद्धा भी स्वर्ग में आने के लिए तैयार नहीं है, इतने दुख अपमान बीमारी होते हुए भी यहाँ की माया को त्यागना नहीं चाहती। धनराज सच कह रहे थे, कि इस संसार में मनुष्य कितना भी दुखी हो, अशांत हो, वो सच्चे दिल से स्वर्ग में आना नहीं चाहता है। इंसान दलदल से जितना भी उठना चाहता है, दलदल में उतना ही फंसता जाता है। अजीब है ये संसार, संसार के लोग दुखी है, परेशान है, अशांत है, दुख छोड़कर सुख पाना चाहता है, लेकिन स्वर्ग सदा सुखों से भरे हुए स्वर्ग में आना नहीं चाहते हैं। माया में सिकंजे में ये संसार जकड़ रखा है, लोग इस सिकंजे से छूट ही नहीं सकते। किसको मिले, कहां जाए, किससे मिले, छोड़ो अब ये सब हाल में धर्मराज को बता देता हूं।
नारायण नारायण।
प्रणाम महाराज।
पधारिए नारद जी, सभा में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
लगता है आपने अपना वादा पूरा कर दिया है।
नारायण नारायण, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं मृत्यु लोक में बहुत लोगों के पास जाकर आया हूँ, एक एक को पूछा और स्वर्ग में आने के लिए समझाया। उनके गलत कर्म होते हुए भी मैंने उनको स्वर्ग में आने का प्रलोभन दिया, फिर भी सच्चे दिल से स्वर्ग में आने के लिए कोई भी तैयार ही नहीं है। मेरे साथ एक भी मनुष्य स्वर्ग में आने के लिए आया ही नहीं है। क्षमा करें महाराज, मैं अपनी जिद पे बहुत शर्मिंदा हूँ।
लेकिन आप संसार में जो स्वर्ग के लायक मनुष्य हैं, उनके पास तो आप गए ही नहीं, और आप उनसे मिले बिना ही वापस चले आए।
स्वर्ग के लिए लायक मनुष्य, वो भाग्यशाली मनुष्य कौन है महाराज?
उनमें से एक है राजयोगी प्रकाश। मानो संसार में लाइट हाउस बन गए हैं। अब मैं आपको अपने मुख से ज्यादा महिमा करूं, उससे तो बेहतर है आप प्रकाश जी की स्वयं मुलाकात लें और स्वयं चलकर देख लें।
नारायण नारायण। महाराज, मैं अवश्य इस राजयोगी प्रकाश जी से मिलूंगा। मैं अभी उस महात्मा के दर्शन करने और स्वर्ग में पधारने का निमंत्रण देने मृत्यु लोक पहुंचता हूं।
गुड मॉर्निंग शिव बाबा, मैं इस कर्म क्षेत्र पर आज के दिन का शुभारंभ करने जा रहा हूं। सर्व आत्माओं के परम पिता शिव बाबा, मेरे परम शिक्षक और परम सद्गुरु प्राण प्यारे बाबा, मैं हर कर्म आपकी आज्ञा अनुसार करूंगा और मुझे विश्वास है कि मेरे हर कर्म में आप मुझे सफलता दिलाएंगे।
बेटा, तुम इतनी जल्दी?
गुड मॉर्निंग मम्मी जी।
सुखी रहो बेटा। जब से तुम ट्रांसफर होकर आए हो, मैं देखती हूँ तुम सुबह जल्दी से उठ जाते हो, पता नहीं तुम इतनी जल्दी क्या करते हो।
मम्मी जी, सुबह उठकर भगवान का ध्यान करना, उन्हें याद करना और उनसे मीठी मीठी बातें करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है।
पर बेटा, तुम सुबह 6-7 बजे उठकर भी भगवान को याद कर सकते हो ना?
मम्मी जी, सुबह 4 बजे जब ज्यादातर लोग सोए हुए होते हैं, तब दुनिया का वातावरण मायावी प्रभाव से मुक्त होता है। इसे अमृत वेले के समय भगवान से योग लगाना और उनसे बातें करना सहज हो जाता है, क्योंकि इसी समय हम भगवान से सीधा बात कर सकते हैं और भगवान भी हमसे बात कर सकते हैं, और इस समय विशेष शक्तियां भी मिलती हैं।
बेटा, मुंबई जाकर आए हो, तुम इतने बदल गए हो। इतनी छोटी सी उम्र में कितनी ऊंची ऊंची और बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे, पसंद हो, वो कर लो।
मम्मी जी, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ।
अरे बेटा, कोई बात नहीं। प्रकाश, चलो चलो बेटा, नाश्ता तैयार है।
जी मम्मी जी।
प्रकाश, तुम तो इतने बदल गए हो,
पर तुम्हें आसपास के लोग मिलेंगे तो शायद पहचान जाएंगे।
अरे 5 साल पहले मेरा प्रकाश इतना चंचल स्वभाव का था और उसकी बचकानी आदत जैसे आसपास के लोगों का जीना आराम कर दिया था। हर कॉलेज में सब पढ़ता था और पढ़ाई में सबसे आगे और इतनी सारी एक्टिविटीज करता था। हर दोस्तों में देर रात तक मिलना जुलना रहता था, पता नहीं क्या क्या करता था।
और आज तेरे बेटे जैसे कोई फरिश्ता उतर आया है धरती पर।
मम्मी जी आप तो कमाल करते हो, मैं आप ही का तो बेटा हूँ, महिमा तो मुझे आपकी करनी चाहिए।
अरे बेटा मैं पूरे हफ्ते से देख रही हूँ, इतना व्यस्त रहने के बावजूद भी सुबह से लेकर शाम तक तेरे चेहरे पर एक रोशनी सी छाई रहती है। थकावट की एक लगी तो नहीं देखी मैंने, अकेले रहते हुए भी सबसे मिला जुला रहता है।
जी मम्मी जी राजयोग का प्रभावी ऐसा है जो जीवन में हर प्रकार की रोशनी भर देता है।
अच्छा तो इसीलिए रोज सुबह सुबह राजयोग का जादू भर में राजयोग सेंटर चला जाता है।
जी भैया आज शाम को ऑफिस से लौटने के बाद मैं सभी को राजयोग सेंटर पर ले जाऊंगा। अभी मुझे जल्दी है इसलिए मैं जल्दी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकलता हूँ। शाम को डिटेल में बात करेंगे।
दरवेश तुम अभी इसी वक्त पटेल एंड पटेल कंपनी की फाइल लेकर मेरी कैबिन में आ जाओ।
लेकिन सर वो फाइल तो मेरे टेबल में से गुम हो गई है, कल तक तो मैंने उसे संभाल कर मेरे टेबल में रखी थी।
अरे कहीं से भी कोई फाइल ढूंढ निकालो, मुझे आगे उस केस को फाइनल करना है।
लेकिन सर अब फिर मैं कहां ढूंढूं, वो मेरे टेबल पे ही है।
अरे कैसी कमाल की बात करते हो तुम, अरे वो तुम्हारे टेबल की फाइल है, कहां ढूंढ गई?
लेकिन सर हो सकता है किसी ने टेबल में से निकाल ली हो, लेकिन आप सबके टेबल की जांच क्यों नहीं करवाते?
सुरेश काम है ना सुरेश?
जी सर।
सुरेश सुनो अभी इसी वक्त पूरे की पूरी ऑफिस छान मारो एंड पटेल कंपनी की फाइल लाकर मुझे दो।
यस सर।
इतना अच्छा आदमी और ऐसा बुरा काम।
मुखियाराम और बगल में छोड़ी वाला मामला है।
प्रकाश जी आप इतने अच्छे दिखते हो और ऐसा बुरा काम करते हो, अरे मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था आप ऐसा घटिया काम कर सकते हैं। जानते हो इस फाइल का इंपॉर्टेंस कितना है? एक तो चोरी की, ऊपर से छेड़छाड़ किया है, अब क्या करेंगे इस फाइल को हम? प्रकाश जी आप एक काम कीजिए, आप अभी इसी वक्त यहां से दफा हो जाइए।
अरे कमिश्नर साहब मैंने इस फाइल को छुआ तक नहीं, मैं अभी इसे पहली बार ही देख रहा हूं। मेरे टेबल से इस फाइल का निकलना मेरे लिए बहुत ही बड़ा आश्चर्य है।
प्रकाश जी मुझे कुछ भी सुनना नहीं है, आप इसी वक्त यहां से निकल जाइए।
मैं बीच में बोलने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ।
कहो क्या कहना चाहती हो?
सच्चाई नहीं बताती हूँ, किसी निर्दोष को दोषी साबित होता देखकर मुझसे बाहर ले जा रहा है। ये काम किसी और का है, प्रकाश जी का नहीं, और ये कलाए तो किसी और के हैं।
मतलब आप कहना क्या चाहती हो?
मतलब ये कि ये कमाल हमारे धर्मेश जी और जयेश जी का है, इन्होंने ये सारी धमाल की है। ये दोनों जब सुबह ऑफिस आते वक्त प्लान बना रहे थे,
हम दोनों कैंटीन से जल्दी से निकलकर वापस ऑफिस में जाकर मेरे पास पटेल एंड पटेल कंपनी का जो फाइल रहता है वो मेरे टेबल में से निकालकर फाइल के गर्भ से बनाकर उसके टेबल के अंदर छिपा देंगे। और आज मैनेजर साहब रिसेस के बाद ही आने वाले हैं, आते ही वो फाइल मांगेंगे, मैं उसको बता दूंगा मेरे टेबल में से फाइल गुम हो गया। फिर हम दोनों प्रकाश के ऊपर चोरी और फाइल में गड़बड़ी का आरोप लगाएंगे।
मैंने उनको अपनी आंखों से ये काम करते रिसेस के वक्त ऑफिस में छिपकर देखा था।
साहब जी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, वो तो कन्वेंट ने प्लान बनाया था और मुझे बताया था और उसने और ये सब उसने किया है। फाइल में चर्चा उसने की है, चर्चा में उसी के हैंड राइटिंग है।
धर्मेश और जयेश तुम दोनों ने भी अच्छा काम नहीं किया, अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसा घटिया काम करते हुए।
ऐसे अच्छे आदमी को बदनाम करना बहुत बुरी बात है, और इसलिए एक हफ्ते के लिए इस दफ्त में मैं तुम दोनों को रिहा करता हूँ। चाहिए रखा हो जाइए।
नहीं नहीं साहब, इन्हें माफ कर दीजिए, मनुष्य से गलती होना स्वाभाविक है।
प्रकाश जी आप जानते नहीं है, ये दोनों इसी के लायक है। और हाँ एक बात, आपके अच्छे रिकॉर्ड के कारण आपके प्रमोशन के लिए मैं ऊपरी विभाग को आज आपकी सिफारिश भेज देता हूँ।
नहीं साहब प्लीज, मैं स्वयं कहता हूँ आप इन्हों को माफ कर दीजिए, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, और कोई सजा नहीं देंगे तो मुझे खुशी होगी।
ठीक है प्रकाश जी, आप कहते हैं तो मैं इन दोनों को माफ कर देता हूँ।
माफ कर दीजिए प्रकाश जी, आप सबसे अच्छे हैं, हम आपका ऐसा कभी नहीं करेंगे।
कोई बात नहीं मेरे भाई,
ये मेरी फाइल है।
अरे सर एक्शन, ठीक है काम कीजिए।
दलपत राम जी, मैंने आपकी फाइल देख ली है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी त्रुटियां भी हैं, और इसमें एनओसी भी नहीं है। कानून अनुसार आपका यह प्रोजेक्ट पास कराना है तो आपको ये पेपर्स देने होंगे।
प्रकाश जी, अगर आप चाहे तो बिना पेपर्स भी फाइल अप्रूव हो सकती है। आप कुछ कीजिए, आपको एनओसी चाहिए ना? मैं लाया हूं लेकिन वो बोगस है, लेकिन आप फाइल में रखकर पास करवा लीजिए, क्योंकि वैसे भी कमिश्नर को आप पे पूरा विश्वास है, मेरा काम हो जाएगा और मैं आपको खुद भी कर दूंगा। बस आप मेरे लिए काम कर दीजिए।
मतलब मैं कुछ समझा नहीं।
अरे प्रकाश जी, मेरा प्रोजेक्ट 1 करोड़ का है, समझिए 5% आपके, मैं अब भी 5 लाख देने के लिए तैयार हूं।
दलपत राम जी, कानून अनुसार आपको अगर ये प्रोजेक्ट पास कराना है तो आपको ये पेपर जरूर देने होंगे। बाकी मैंने पहले ना तो ऐसा काम कभी किया है और ना ही करना चाहता हूं।
प्रकाश जी, आपको ज्यादा रुपये चाहिए ना? मैं आपको 10% देने के लिए तैयार हूं।
दलपत राम जी, कानूनी तौर पर आपका काम सही होता तो मैं जरूर कर देता। कानून के हिसाब से अगर कोई मदद चाहिए तो बोलिए, मैं जरूर कर दूंगा, मुझे खुशी होगी, मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं है।
अरे कमाल कर रहे हैं आप, मैं आपको लाखों रुपए की ऑफर कर रहा हूं और फिर भी आप कानून की पूछ पकड़ कर बैठे।
देखिए मुझे यहाँ पे काम करने के लिए तनख्वाह मिलती है जिससे मेरा गुजारा चल जाता है, और कोई रास्ते से पैसा कमाने की मुझे जरूरत ही नहीं है।
नारायण नारायण
नारायण,
मेरे बॉस का नाम है।
कौन है?
मैं मोना।
है
आप? जय श्री कृष्ण माता जी।
जय श्री कृष्ण।
मैं मोना प्रकाश के साथ ऑफिस में काम करती हूँ। आप प्रकाश की माता जी है ना?
जी, पर प्रकाश अभी घर पे नहीं है।
माता जी, मैं आपसे मिलने आई हूँ।
मुझसे? ठीक है ठीक है, ये बैठिए। हाँ कहो, क्या बात है?
माँ जी, मैं प्रकाश और मेरे बारे में कुछ बात करने आई हूँ।
प्रकाश और तुम्हारे बारे में?
ये पहला मत बिछाओ,
जो कह रहे हैं साफ साफ कहो।
माँ जी, आप मुझे बेटा कहती हैं ना, आप मेरे दुख की बात समझोगे ना?
हाँ जरूर, घबराओ मत, बोलो।
माँ जी, मैं प्रकाश।
तुम और प्रकाश, क्या बात है पिता? बोलो, मुझे अपनी मां समझकर दिल खोलकर कहो, क्या बात है?
माँ जी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों रोज ऑफिस के बाहर मिलते हैं, मुंबई में भी मैं उसके साथ थी, अभी तो कई महीने का प्यार है हमारा, और अब कब तक मैं इंतजार करती रहूं? मेरे माता पिता मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन हमने एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लिया है, और प्रकाश ने भी मुझसे शादी का वादा किया था। लेकिन अब मैं जब प्रकाश से शादी की बात करती हूँ तो पता नहीं वो मेरी बात को क्यों टाल देता है।
क्या तुम्हारी और प्रकाश की शादी? तो प्रकाश ने तो आज तक मुझे कुछ नहीं बताया, और तुम्हारे बारे में भी कभी कुछ नहीं कहा,
इसीलिए तो माजी मुझे आना पड़ा। पता नहीं प्रकाश शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कहता।
मम्मी जी मैं आ गया।
आओ बेटा, हम लोग तुम्हारी बातें कर रहे थे।
मेरी बातें?
तुम्हारे ऑफिस से मोना आई हुई है।
मेरे ऑफिस से मोना?
मेरे ही।
अरे बहन जी आप, कोई खास बात है क्या? हमारे घर आए?
देखा माँ जी प्रकाश किस तरह से बात कर रहे हैं।
प्रकाश, मोना ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है।
मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं, आखिर बात क्या है?
बेटा मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा और मोना का संबंध क्या है? तुमने ये बात मुझसे छिपाई क्यों?
मोना से मेरा संबंध? आप क्या बोल रहे हैं मम्मी जी, आज तक मैंने आपसे कोई भी बात छिपाई नहीं है। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है।
गलतफहमी तो अभी तक थी बेटे, मोना ने आकर मेरी सारी गलतफहमियां दूर कर दी। तुम अपने आप को राजयोगी ब्रह्मा कुमार कहलाते हो, और मुझे अंधेरे में रखते हुए इतना कुछ कर दिया। स्वयं को बिके
कहलाते। अरे नीचे बाबा, लगता है कोई बढ़िया सा ड्रामा चल रहा है मेरे सामने।
बता सकता है तुम्हें तो मोना की और हमारी जिंदगी को नुकसान बना दिया।
आज आपको क्या हो गया है?
आपने मेरे माजी को हमारी मोहब्बत के बारे में सब कुछ बता दिया है, और अपनी शादी के बारे में बात कर रही है।
मोना बहन आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे बीच ऑफिस के काम के अलावा और कोई संबंध है ही नहीं। अरे आप तो मेरी बहन के समान हैं। मैंने तो कभी सपने संकल्प भी ऐसे नहीं सोचा था।
नहीं प्रकाश, तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बाजू से मुझे धोखा नहीं दे सकते। माजी माजी अब तो आप ही मुझे बचा सकती हैं।
प्रकाश, कोई लड़की बुरा ऐसे चुप क्यों बोलेगी? नहीं नहीं तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते, मेरे बेटे ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं तुम्हारा वो भी नहीं देखना चाहती हूँ।
मम्मी जी आप मुझ पर यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ।
या तो तुम मोना से शादी करोगे, तुम्हें घर छोड़कर चले जाओगे। तुम्हारे लिए और कोई रास्ता नहीं है।
मम्मी जी मैं किसी भी कीमत पर अपने ब्रह्मचारी जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता। अगर आपका यही आखिरी फैसला है तो फिर मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए पवित्र जीवन ही सब कुछ है। मैं परमात्मा की श्रीमत को किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए।
नारायण नारायण नारायण
नारायण। क्या
तो मोना? मोना नहीं माजी, मैं नारद हूँ, मैं देवलोक से आया हूँ।
अरे नारद जी आप प्रणाम हो।
प्रणाम और सम्मान करने योग्य तो आप हैं प्रकाश जी। प्रकाश जी माजी अगर मैंने आपको कोई तकलीफ पहुँचाई हूँ तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं प्रकाश जी की कसौटी करना चाहता हूँ।
ये सब क्या है नारद जी? अभी आप ही मोना का रूप लेकर आए थे, और मोना ने जो बातें सब बताई वो सब आपने की थी या फिर झूठ था?
नारायण नारायण, मैं ही मोना का रूप लेकर आया था, और मैंने दस कहानी बनाकर प्रकाश जी की कसौटी करना चाहा।
पर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं?
क्योंकि प्रकाश जी की अच्छाइयों, गुणों और महानताओं को तो मैंने देखा, लेकिन मैं उनके चारित्र की कसौटी करना चाहता था, इसलिए मौनियों का रूप लेकर मैंने ये सब कुछ किया। अब मैं प्रकाश जी के उत्तम चारित्र और दिव्यता से बड़ा प्रभावित हूं। सचमुच प्रकाश जी, आप पक्के राजयोगी हैं, आप पक्के ब्रह्मा कुमार।
इस मायावी संसार में रहते हुए भी आप कमल पुष्प के समान पवित्र और दिव्य जीवन जी रहे हैं, और मैं प्रकाश जी को सुबह से देख रहा हूं, और दलपतराम जी का रूप लेकर मैं ही उनको लाज की लालच देने आया था, लेकिन आप उसमें भी पार उतरे। सचमुच आप धन्य हो, अभी इस मनुष्य लोक में आप जैसा चरित्रवान गुणवान मानव मैं पहली बार देख रहा हूं। किन शब्दों में आपकी महानता की सराहना करूं? आप धन्य हो, आप महान हो, आपके दर्शन करके मैं धन्य धन्य हो गया। आप ही स्वर्ग के अधिकारी हैं।
अरे इसमें हमारी कोई महानता नहीं है, महानता और महिमा तो उस परम पिता शिव की, जिनकी कृपा से हम गुणवान बने और हमारा जीवन धन्य बना। आखिर ये सब कमाल उसी की है।
आपका दर्शन करके तो धन्य हो गई। मेरे बेटे की परीक्षा करने आपको स्वयं आना पड़ा। मुझे भी था, मेरे मन में था बेटा कि मेरा बेटा ऐसा करने से नहीं सकता। पंजाबी जो मैंने कुछ कह किया हो तो मुझे क्षमा कर दो बेटा, मैं तुम्हारी महानता जानी नहीं पाई।
माँ जी, आप भी धन्य हो कि आपने ऐसे महान बेटे को जन्म दिया है। मैं आपके बेटे के लिए एक विशेष निमंत्रण लेके आया हूँ। स्वयं धर्मराज महाराज ने आपके बेटे को स्वर्ग के योग्य समझकर स्वर्ग में पधारने का निमंत्रण दिया है। प्रकाश जी, आप तो मेरे साथ स्वर्ग में आएंगे ना? मेरा निमंत्रण स्वीकार करेंगे ना?
मुनिवर, आपका और धर्मराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे स्वर्ग के लिए निमंत्रण दिया। मैं आऊंगा जरूर, लेकिन अभी नहीं, जब परमात्मा संसार की सभी आत्माओं के लिए मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता खोलेंगे और इस संसार को स्वर्ग बनाएंगे तब।
महान है और प्रकाश जी, सचमुच महान है। मैं भी यही सोच रहा था कि इस संसार की सर्व मनुष्य आत्माओं को स्वर्ग में बुला लिया जाए, और ये कार्य आप भी कर रहे हैं। तो मैं अब प्रस्थान करता हूं। नारायण नारायण।
चित्रगुप्त, आप तो ग्रंथ में ही खो गए, क्या बात है, कुछ बताइए तो सही।
महाराज, संसार की हालत बहुत ही गंभीर है।
ये आप क्या कह रहे हैं?
लेकिन महाराज, आजकल लोग भक्ति भी बहुत कर रहे हैं, लोग धर्म पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप कर्म से मुक्त नहीं हो रहे हैं।
संसार में अभी तो धर्म ग्लानी हो रही है, और यही तो कलयुग की निशानी है। अगर मनुष्य अपने आप को भूलकर देह समझकर कर्म की गति को जाने बिना ही कर्म कर माया के चक्र में फंसता ही जाता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को इस मायावी चक्रव्यूह से निकलने का न तो कोई रास्ता बता सकता है और न ही इनसे मुक्ति दिला सकता है। पापों का जोर बढ़ता ही जा रहा है, लगता है कि संसार में जरूर कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। हर चित्र की गति उनके अंत का संकेत देती है।
महाराज, आप सत्य कह रहे हैं, संसार में जरूर कोई बड़ी घटना घटने वाली है।
नारायण नारायण।
महाराज, धर्मराज की जय हो।
पधारिए नारद जी, आपका स्वागत है, बताइए क्या समाचार है।
धन्यवाद महाराज, मैं अभी आपकी आज्ञा अनुसार राजयोगी प्रकाश जी से मिलकर आया हूँ। मैं उससे मिलकर धन्य हो गया। संसार में रहते भी उनका जीवन सद्गुणों से भरा हुआ है। उनका जीवन पवित्रता की जलती मशाल की मिसाल है। पापाचारी कलियुगी संसार के कादों में रहते हुए भी उन्होंने अपने जीवन को कमल पुष्प के समान पवित्र बनाया है। सचमुच प्रकाश जी ही स्वर्ग में आने के अधिकारी है।
तो आपने उन्हें स्वर्ग का निमंत्रण दिया कि नहीं?
जी महाराज, मैंने उनको स्वर्ग में पधारने का निमंत्रण दिया और उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रभु, इस संसार के सभी मनुष्यों के लिए जीवन मुक्ति के दरवाजे खोलेंगे और ये संसार स्वयं स्वर्ग बन जाएगा। अभी मैं स्वर्ग में आने के लिए तैयार होऊंगा।
नारद जी, प्रकाश जी ने सच ही कहा है। बस अब स्वर्ग का गेट खुलने का समय आ गया है।
स्वर्ग का दरवाजा खुलने वाला है?
हाँ मुनिवर, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मृत्यु लोक में प्रकाश के साथ उनके जैसी कई आत्माएं स्वयं को देवता तुल्य बनने का पुरुषार्थ कर पवित्र बनकर स्वर्ग में आने के लिए तैयार हो रही है। हाँ, अब सृष्टि का महापरिवर्तन होने वाला है और इस अंतिम परिवर्तनशील समय में ज्ञान योग पवित्रता से आने वाली नई दुनिया स्वर्ग के लिए तैयार है। इसलिए सृष्टि के नियंता स्वयं विश्व कल्याणकारी स्वयंभू परमात्मा शिव ने रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की भारत में स्थापना कर विश्व परिवर्तन का कार्य शुरू कर दिया।
धन्य हो प्रभु।
अब कलयुग भी अपने अंतिम चरण में, जिन्होंने इस कलयुग के अंत के भी अंतिम समय में अपने आप को आत्मा समझ करके परमपिता परमात्मा से सर्व संबंध जोड़कर माया अर्थात पांच विकारों से मुक्त होकर राजयोग का अभ्यास किया है, ऐसी बहुत सारी आत्माएं स्वर्ग में आएंगी। लेकिन उससे पहले विश्व का महापरिवर्तन अर्थात महाविनाश होने जा रहा है। सर्व आत्माएं अब अपने कर्मों के अनुसार फल पाएंगी और स्वर्ग का फल पाएंगे।
धन्य देवों के देव महादेव, परम कृपालु परमात्मा, परम पिता शिव जी, आखिर आपने इस सृष्टि की सर्व दुखी आत्माओं को मायावी आसुरी साम्राज्य से मुक्त करने का मार्ग खोल ही दिया। हे प्रभु शिव शंभो, आपकी लीला अपरंपार है। मेरा मन भी कल्याणकारी परम पिता परमात्मा शिव के रचे हुए इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ को देखने के लिए तरस रहा है। मैं ये ज्ञान यज्ञ को देखकर अपने आप को धन्य करने के लिए अभी ही मृत्यु लोक में पहुंचता हूँ।
अवश्य जाइए।
प्रणाम महाराज। नारायण नारायण।
आज मेरे एक लौटे बहन की शादी में हमने मेहमानों को अपनी एक चटक पटक नमकीन खिलाई थी और इस घटिया नमकीन की वजह से दो लोगों की जान गई है और 38 लोग अस्पताल में पड़े हैं और इसके जिम्मेदार आप हैं। आप, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि ये सब फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है। फूड पॉइजनिंग की वजह से?
आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी नमकीन की वजह से उनकी ये हालत हुई है? देखिए, हमारे चटक पटक नमकीन इस शहर में ही नहीं पूरे राज्य में लोकप्रिय हैं और आज तक कोई शिकायत नहीं आई। और बिना मतलब आप उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते। संजय, जाकर पता लगाइए कि कोई और चीज खाने से उनकी यह हालत तो नहीं हुई ना। चाहिए
देखो सेठ, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अस्पताल में आकर देख लीजिए। और वैसे भी हमारे पास वो आपके खाली फूड पैकेट पड़े ही है और बिल भी हमारे पास ही पड़ा है।
और ये रहा उसका बिल। और वैसे भी अगर आप अस्पताल में आएंगे तो डॉक्टर आपको बता देंगे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है और किस चीज से हुआ है। इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? हाँ
देखो, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, घंटे भर में मैं अस्पताल पहुंचूंगा।
देखो सेठ, आपको आना तो पड़ेगा ही, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा।
ले लीजिए साहब आपके 10,000 रुपए।
अब तो हमारा काम दो दिन में हो ही जाएगा। क्यों साहब? अरे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मैं आपका काम नहीं करूंगा। बस यूं समझिए आपका काम हो गया।
अच्छा साहब, तो हम चलते हैं, हमें जरा जल्दी है।
ओके।
मिस्टर सनत कुमार खड़े हो जाइए, स्टैंड अप।
लेकिन आप है कौन?
हम एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस से आए हैं और आपकी तलाशी लेना चाहते हैं।
लेकिन क्या किया?
वो तो बाद में पता पड़ेगा।
देखिए देखिए भाई साहब, आप
ये क्या है? इतने सारे रुपये आपके पास आए कहां से?
देखिए ये मेरे पास रुपये हैं, इसमें आपको क्या आपत्ति?
देखिए मिस्टर, बहुत हो चुका, आपके ऑफिस में अभी जो दो आदमी आए थे उनके पास से आपने 10,000 रुपया रिश्वत के रूप में लिया है। इसके लेबोरेटरी जांच होगी, आपको हमारे साथ आना पड़ेगा।
अरे भाई हटिए हटिए, ओ भाई ये क्या है? प्लीज मेरी बात सुनिए, हटिए।
इस तरह से किसी को मना ठीक बात नहीं है।
धन्यवाद भाई, लेकिन माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हो? तो समझे इस तरह मरने से बचना।
मेरा नाम प्रकाश है, मैं यहाँ पास में विजयनगर में ही रहता हूँ। आपका बसना ये तो आपके भाग्य की बात थी, मैं तो मिलित मात्र हूँ भाई।
वो जो भी है, लेकिन आप मरी नहीं, दो का सवाल में
सब ठीक हो जाएगा।
प्रकाश जी, मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अपने इसी ढूंढों के कारण मैंने मेरा इकलौता का बेटा गवाया है। प्रकाश जी, बहुत अशांत और दुखी हूं। सचमुच मैं आपका जिंदगी भर ऐसा अंदर रहूंगा।
भाई, सबका सहारा तो एक परमपिता शिव परमात्मा ही है, जो कि शांति का सागर है। उससे आप अपना सर्व संबंध जोड़ दीजिए तो आप दुख और अशांति से मुक्त होकर संपूर्ण सुख और शांति को प्राप्त कर सकेंगे।
हेलो
हेलो,
मैं नगर सेठ का भाई बोल रहा हूँ। परमानंद जी को फोन दो।
साहब, गुरुदेव अभी प्रभु की सेवा पूजा में बैठे हैं, दो घंटे के बाद गुरु जी सेवा पूजा में से फ्री होंगे।
आप मुझे समाचार सुनाइए, मैं गुरु जी को बता दूंगा।
देखो, मैं नगर सेठ की अवेली से बोल रहा हूँ, सेठ अमीचल का छोटा भाई बोल रहा हूँ। हबीब हबीब सेठ जी का निधन हुआ है, सो कुछ हुआ है सो ठीक नहीं हुआ है, आपके गुरु जी की दवाई के कारण हुआ है। आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं देख लूंगा आप लोगों को। तुम्हारी वजह से मेरे बड़े भाई का निधन हुआ है, आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें।
मारो पकड़ने को, मारो मारो, अरे बात का काम है।
जाते हैं पुलिस स्टेशन, ससुराल में बैठ के वहाँ की ठंडी हवा खाओ। चलो बैठ जाओ, चलो।
आइए प्रकाश जी, आइए।
सर ये प्रकाश जी हैं।
अच्छा अच्छा, नमस्ते सेवक राम जी, ओम शांति।
नमस्ते नमस्ते प्रकाश जी, बैठो बैठो।
हाँ तो बताइए प्रकाश जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
आज तो सेवक राम जी, हम आपके लिए किशोर निमंत्रण लेकर आए हैं। माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी के परिसर में राजयोग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आपको मुख्य अतिथि के रूप में जरूर आना है। ये लीजिए।
ठीक है प्रकाश जी, देखिए हमारे पास इतना समय नहीं है, और फिर हमें क्या जरूरत है शिविर की? सच बताऊं तो देश सेवा करने से हमें समय ही नहीं मिलता।
अगर सेवक राम जी, आपको तो मुख्य अतिथि के रूप में आना है, और आप
यहाँ सब कुछ समझता हूँ, लेकिन प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरे पास समय नहीं है।
और सर जी, वैसे भी गाड़ी तैयार है और लोग आपका सभा में इंतजार कर रहे हैं।
हाँ
सर, चलिए चलिए।
अच्छा तो सेवक राम जी, मैं बाद में आऊंगा फिर कभी। धन्यवाद।
ठीक है, धन्यवाद।
तीन दिन की शिविर के पश्चात आज रक्षाबंधन के पर्व पर मैं इतना ही कहूंगी कि हर एक ये संकल्प करे कि जो हुआ वो हो गया, अब हम अपना जीवन परमपिता परमात्मा को सौंप दे और पिछली सारी बातें भूल जाए, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है।
सब कुछ आपके प्रवचन से मुझे बहुत ही मिलती शांति मिली, लेकिन बहन जी आप मुझे रास्ता बताइए। मैंने इस छोटी उम्र में भी बहुत गुनाह किया है, क्या क्या नहीं किया मैंने, आपके आपके पाँव छूने के भी काबिल नहीं हूं मैं बहन जी। आप धन्य, आपने इतनी छोटी उम्र में आपका जीवन कितना ऊंचा बना दिया।
बहन जी विकास ठीक कह रहा है, मैंने भी ऐसे काम किए, और बहन जी मेरे कार्य का नतीजा मेरा ही होता है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। सचमुच हम अच्छा जीवन बनाना चाहते हैं बहन जी।
आप दोनों धैर्य से काम लीजिए, आज के इस पावन पर्व पे आप दोनों मेरे भाई ही हैं। आप दोनों दृढ़ संकल्प करो तो परमपिता परमात्मा सब ठीक कर देगा, बस आप अपने आप को उनके हवाले कर दो।
बहन जी आज से हम दोनों दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम किसी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करेंगे, बल्कि हमारा जीवन किसी के काम आए ऐसा जीवन बिताएंगे। बहन जी क्या हम राजयोग भी बन सकते हैं?
हाँ हाँ क्यों नहीं, आप भी इस राजयोग का अभ्यास करके अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं।
सचमुच ये तो जादू सा हो जाए।
ये तो इस परम कल्याणकारी परम पिता शिव परमात्मा का ही कमाल है, हम तो उनकी ही मेहरबानी समझते हैं।
जलो साहब हमें ये ज्ञान बहुत अच्छा लगा, हम और भी ज्ञान सुनना चाहते हैं, अगर यहाँ पर ऐसे ज्ञान के प्रवचन और भी रखे जाए तो हमें बहुत आनंद होगा।
अगर आप कहें तो हम राजयोग शिविर का आयोजन यहाँ कर सकते हैं, और शिविर से इनके साथ साथ इन सबको भी फायदा हो जाएगा।
जाते वक्त मैंने उसको टीका लगाया था, फिर उसका बाल बांका कैसे हो सकता है? जाते वक्त मेरे को ये बोल के गया था, दादी मैं जल्दी वापिस आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजें ले आऊंगा, मिठाइयां लेके आऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता।
माँ जी शांत हो जाइए, होली को कोई रोक सकता है भला? मुझे आप अपना बेटा ही समझिए, रोने से भला क्या वह वापिस आ जाएगा? आपके रोने से उसकी आत्मा को दुख भी होगा, अगर हम दुखी होंगे तो उसकी आत्मा को शांति कैसे दे सके?
आपकी बात तो सही है।
अच्छा तो क्या अब हम सभी दिव्येश की आत्मा को शांति मिले उसके लिए 5 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे?
आप दोनों का जीवन परिवर्तन देखकर और औरों के प्रति व्यवहार को देखते हुए सरकार ने तुम दोनों के बाकी की सजा आज ही खत्म करने का फैसला किया है।
आपने मुझे मौका दिया है और आपने हम पर जो भरोसा रखा है हम उसे कभी नहीं छूटने देंगे।
चलो सर, हम पूरे समाज में जाकर नेक काम करेंगे और हमारे साथी मित्र और युवा वर्ग जो गुमराह हो गए हो उन सबको अच्छी राह पर लाने का प्रयास करेंगे।
देश का फ्लक दिल है।
अरे ये कौन है, क्या हुआ है इन्हें? अरे ये तो सनत कुमार जी है। सर सर, लगता है कुछ गड़बड़ है, इनके मुंह से पानी भी निकल रहा है और ये बेहोश है। अरे वर्जन, कुछ गड़बड़ है। अरे भाई कोई है भाई, जरा मदद के लिए आओ भाई। देखिए इन्हें कुछ हो गया, इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। चलिए
आप सही वक्त पर नहीं आते तो मेरा क्या होता, फिर दिल्ली बच्चों का क्या होता। आप मेरे लिए देवता समान हो, आप मुझे जिंदगी बचाते।
ये तो मेरा फर्ज था, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा। लेकिन
अभी कहा जाऊं, क्या करूं, कौन देगा मुझे नौकरी। मैंने बहुत गलत किया है, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं।
प्रकाश जी,
अब तो नेक इंसान है, ईमानदार है, त्यागी है। बताइए मैं क्या करूं, कहां जाऊं।
संत कुमार जी अभी शांत हो जाइए, जो होना था से हो गया, अभी चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आपको ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहां पर आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, मगर अभी आप आराम कीजिए, मैं चलता हूं। ओम शांति।
यहाँ पर अपन कितनी जनता यहाँ पर मौजूद है आपके लिए। सर ये यहाँ के लोकल नेता है। आइए
कैसे सर? ठीक ठाक है जी।
रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो।
आइए आइए सर, आइए 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 सर, आइए सर, आइए सर, आइए।
मेरे प्यारे भारतवासी भाइयों और बहनों, मैं किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर अपने भी सेवा करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने वो पार्टी छोड़ी है, क्योंकि मैं अपने सिद्धांतों को न छोड़कर अपने देश के नागरिक को हो रहे अन्याय को नजरअंदाज करके अपने साथियों का साथ न छोड़कर मैंने वो पार्टी छोड़ दी है। और वास्तव में देश की जनता की सेवा करने वाली, सच्ची सेवा करने वाली पार्टी में शामिल हो गया हूं। बस अब आप हमें सेवा का मौका दीजिए, मुझे वोट दीजिए। मैं अपने देश के हर नागरिक को सुखी देखना चाहता हूं, अपने देश के नागरिक की हर समस्याओं का हल निकालूंगा। और कोई भी रोटी कपड़ा मकान बगैर नहीं रहेगा। इस देश के हर नागरिक को खुशहाल बनाने का मैं पक्का वादा करता हूँ। मैं
अरे सुभद्राम जी, आप आके बदलते रहेंगे तो हम लोग आप पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? और आपने पिछले वर्ष में केवल वायदे तो पूरे किए नहीं और इस बार भी वायदे किए जा रहे हैं और वायदे से पेट नहीं भरते, वायदे से दिल भी नहीं भरती, कुछ करके दिखाइए।
हेलो कौन?
सीएम बोल रहा हूँ।
अच्छा अच्छा, सीएम साहब आप हैं? हाँ बोलिए बोलिए साहब। हाँ जी सेवक राम बोल रहा हूँ मैं।
कैसे हैं आपकी तबीयत?
हाँ हाँ जी ठीक है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हाँ हाँ थोड़ा बहुत चल सकता हूँ। हाँ थोड़ा दर्द है शरीर में लेकिन वो तो दो चार दिन में ठीक हो जाएगा। हाँ पहले आप फरमाइए क्या आज्ञा है हमारे लिए साहब?
बस अब कुछ नहीं, आपके लिए एक खुशी का समाचार है। अब हम आपको सब काम से फ्री कर देना चाहते हैं, इसलिए आप अपने इस्तीफा 5 मिनट में मुझे टैक्स से भेज दीजिए। हम आपको पार्लियामेंट इलेक्शन में खड़ा नहीं कर सकते। आपके नाम पर चले राशन के घोटाले को लेकर आज विधानसभा में विरोधी दल ने हंगामा मचा दिया। क्या उत्तर दें हम? जांच में सारा मामला बाहर आ जाएगा तो हमारी सरकार का नाम बदनाम हो जाएगा, आपको सिटिंग अधिकार अपना हो सकता है।
साहब जी सर जी बात तो सुनिए, ये तो मेरे घाव हो रहा था
बहुत हो गया। स्टॉप इट, आई नीड योर रेजिग्नेशन विदिन 5 मिनट्स, दैट्स माय ऑर्डर।
ठीक है। क्या हो रहा है? इस सब जगह तो मेरी हार हो रही है, मेरे सारे प्लान छोटे बैठे जा रहे हैं। वो पार्टी को मैंने छोड़ दिया और वो नई पार्टी मैंने छोड़ दी तो रोल गया। क्या करूं मैं? इसी तरह चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा, सचमुच पागल हो जाऊंगा मैं।
किसका फोन था?
वही चक्कर, पता नहीं क्या हो रहा है। सुनो, हमारा सब कुछ हमसे छीन जाए, ये लोग हमें मार मार के इस घर के बाहर निकाल दे, इससे पहले हम लोग किसी हिल स्टेशन पर चले जाएंगे, थोड़े दिन वहां आराम से रहेंगे। वैसे भी लोग यहां चैन से जीने नहीं देंगे और वैसे भी मुझे बहुत सारा टेंशन है। भगवान इस नर की दुनिया से जल्दी छुड़ाए तो अच्छा।
और इस तरह इन सभी ने यह महसूस किया कि मन की सच्ची शांति व सुख सांसारिक चीजें नहीं बल्कि एक परमात्मा शिव ही दे सकते हैं और इसीलिए इन्हें पाने के लिए सभी लोग माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारीज में ही पहुंचते हैं।
देखा कितना अद्भुत स्थान है ये, कितना शांत और पवित्र वातावरण है ये। अरे ये सब सफेद वस्त्रधारी फरिश्तों से आए लगते हैं। अरे वाह देखो ये सब कैसे फरिश्तों की तरह घूम रहे हैं। अरे ये तो बिखे प्रकाश ही लगते हैं, लगते हैं सबको शिविर के लिए यहां लेकर आए हैं। अरे प्रकाशी आप यहां का अद्भुत वातावरण देखकर हम बहुत बहुत प्रभावित हो गए। लेकिन हाँ आप इन सब लोगों को यहां शिविर के लिए लाए क्या?
जी हाँ अभी हम सब शिविर के लिए आए हैं, आप भी यहाँ आए तो अच्छा हुआ, लगता है आपका भाग्य ही आपको खींच कर लाया है यहाँ। अब आपका भाग्य तो जल्दी ही बदलने वाला है। मिले इन सबसे, यह है शेख करोड़ीमल जी, यह है मुकेश, यह है नरेश और यह है माता ममता जी।
सबको मेरा प्रणाम, ओम शांति। प्रकाश जी मैं तो यहाँ सिर्फ देखने आया था, क्या हमें शिविर में स्थान मिलेगा?
फिकर मत करो, इसे आप अपना ही घर समझिए। यहाँ आप आराम से रहकर शिविर का लाभ अवश्य लीजिए, मैं आपके लिए इंतजाम करवा दूंगा।
कितना सुंदर, कितना शांत और कितना पवित्र वातावरण है यहाँ। शायद ही ऐसा कहीं होगा। कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, कारोबार कैसे होता है? और यहाँ कोई आवाज भी नहीं, सब लोग कितना मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं।
प्रकाश जी, मेरा तो दिल कहता है यहीं पर ठहर जाऊं।
क्यों नहीं, आपका ही तो घर है और यहाँ सब आपके ही तो परिवारजन है।
आपको देखकर लगता है जैसे आप हमारे अपने हो।
महाशय, आइए, आपका स्वागत है।
प्रकाश जी, आप मुझे ये बताइए कि ये संस्था इतनी बड़ी है तो इसके गुरु क्या हैं और इसका संचालन कैसे किया जाता
है? ब्रह्मा कुमारी के 82 जितने देशों में 6,000 जितने सेवा केंद्र हैं और करीबन 8,00,000 भाई बहनों ने राजयोग सीखकर अपना जीवन उच्च बनाया है और हर रोज ईश्वरीय ज्ञान सुनने के लिए सेवा केंद्र पर जाते हैं।
लेकिन प्रकाश जी, आखिर इस संस्था की स्थापना किसने की?
स्वयं परमात्मा शिव, जो कि सर्व आत्माओं के परम पिता है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान निराकार ज्योतिर्मय बिंदु है, वही तो इस संस्था के संस्थापक और सद्गुरु है।
स्वयं भगवान शिव ने?
नारायण नारायण।
नारद जी, आप याद हैं, आप तो हमें स्वर्ग का निमंत्रण देने आए थे ना?
हाँ, मैं जिस स्वर्ग का निमंत्रण देने आया था उस स्वर्ग की स्थापना परमात्मा शिव स्वयं करा रहे हैं। मुझे स्वयं धर्मराज ने बताया कि परमात्मा शिव का रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है, जिसमें लाखों आत्माएं अपने विकारों की आहुति देकर पवित्र बनकर देवी देवता बनने का पुरुषार्थ कर रही है। तो मुझसे रहा नहीं गया और ऐसे अद्भुत ज्ञान यज्ञ को देखने के लिए मैं स्वयं आ पहुंचा।
जी हाँ, यह यज्ञ किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने स्थापन किया है, क्योंकि रामेश्वर, नागेश्वर, बद्रीनाथ आदि अनेक नामों से शिवलिंग के रूप में पूरे भारत वर्ष में पूजा होती आई है, वही भगवान शिव ने। आज जबकि इस कलयुग में संसार की सभी मनुष्य आत्मा और प्राणी दुखी और अशांत हो गए हैं और पुकारते हैं कि हे प्रभु, आकर हमें इस विद्वान से छुड़ाओ, तो इस दुखमय पुकार को सुनकर स्वयं विश्व नियंता परम पिता परमात्मा शिव गीता में किए गए वायदे अनुसार इस सृष्टि पर एक वृद्ध अनुभवी पुरुष के तन का आधार लेकर और उन्हीं के मुख कमल द्वारा सत्य ईश्वरीय गीता ज्ञान लेकर इस ईश्वरीय यज्ञ की स्थापना की ओर नई स्वर्णिम दुनिया सर की स्थापना करा रहे हैं। और आज जबकि यह यज्ञ भी अपने अंतिम चरण में है।
क्या इतना बड़ा और अद्भुत विश्व परिवर्तन का कार्य शुरू होकर संपन्न हो गया और हमें पता तक नहीं चला? लेकिन प्रकाश जी, तभी हमें ये बताइए कि आखिर कौन है वो महापुरुष जिसे स्वयं भगवान ने इस विश्व परिवर्तन के कार्य में अपना माध्यम बनाया?
प्रकाश जी, मैं भी जानना चाहता हूँ कि परमात्मा शिव ने ऐसा यज्ञ कब और कैसे रचा है।
आइए, आप सबको मैं इसका रहस्य बताता हूँ।
जो परमात्मा शिव के साकार माध्यम बने, सब उन्हें प्यार से दादा मेघराज या नकी बाबू कहा करते थे। वे हीरे जवाहरात के बहुत बड़े व्यापारी थे। राजा महाराजाओं के साथ उनका कारोबार चलता था। वे सबका सम्मान करते थे, जो बड़े जानवी भी थे गरीब लोगों का भी सम्मान करते थे और उदयपुर के महाराजा तो उन्हें परिवार सहित अपने राज दरबार में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करते थे और उन्हें मान सम्मान भी देते थे। उस समय की सोसाइटी में दादा सब भगवानों से एक थे और बहुत सम्माननीय भी थे। दादा बड़े बड़े राजा महाराजाओं के आगे भी अपनी नियम और मर्यादाओं को नहीं छोड़ते थे। किसी को भी राजा चाहते थे कि गलती से आपके बजाय भगवान ने हमें राजा बना दिया है, जबकि राजा के सर्वगुण तो आप नहीं
हैं। और सद्गुणों का समन्वय बहुत ही निरल व्यक्तियों में होता है जो दादा के व्यक्तित्व में
दादा श्री नारायण के परम भक्त थे और भगवान को पाने के लिए उन्होंने एक के बाद एक 12 गुरु किए। वे बहनों और माताओं का बड़ा आदर और सत्कार करते थे। श्री लक्ष्मी जी श्री नारायण के पैर दबाते हुए ऐसा चित्र दादा को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार दादा मुंबई में अपने बंगले में सत्संग में बैठे थे।
लेकिन विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार कराना किसी मनुष्य का कार्य नहीं हो सकता। प्रकाशी, दादाजी ने साक्षात्कार के बाद क्या किया?
इस साक्षात्कार के पश्चात दादा एकांतवासी हो गए और उस घटना को समझने के लिए मनन चिंतन करने लगे। थोड़े दिन पश्चात जब वे गाना सुन गए
विनाश, अब आप अपना मोहिनी रूप दिखाइए।
प्रकाश जी, 1937 में अनुपम बने ही नहीं थे और उसके पहले ही साक्षात्कार हो गया। लेकिन इस साक्षात्कार के पीछे क्या राज था और दादा के जीवन में क्या परिवर्तन आया?
महाविनाश का साक्षात्कार होने के पश्चात दादा को यह विश्वास बढ़ गया कि यह साक्षात्कार कराने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है। और फिर उन्हें अपने हीरे जवाहरात के व्यापार से वैराग्य आ गया और फिर वे अपने बिना समेटने के लिए कलकत्ता गए और अपने पार्टनर से मिले।
तो क्या उन्होंने इतना बड़ा विशाल कारोबार बंद कर दिया?
हाँ, दादा को यह यकीन हो गया कि नजदीक के भविष्य में विश्व में महाविनाश होने वाला है और इसलिए उन्होंने अपने पार्टनर को बताया कि अब मुझे धंधा नहीं करना है और अपना शेष जीवन साधना में बिताना है और अपना सारा धन ईश्वरीय सेवा में लगाना है। तब पार्टनर ने कहा कि दादाजी, आपके बिना तो सारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। लेकिन दादा ने कहा कि दोस्त, मुझे कम मुनाफा देकर भी इस धंधे से मुक्त करो। मुझे भगवान का इशारा मिला है कि अभी इस दुनिया का महाविनाश नजदीक है। फिर दादा साधना में लीन हो गए। एक दिन जब दादाजी के घर 12वें गुरु पधारे हुए थे और सत्संग दौरान
Thank you.
ब्रह्मा की
शक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव थे जिन्होंने अपना परिचय खुद ही लिया।
क्या स्वयं शिव ने उनके तन में प्रवेश किया और अपना परिचय दिया? गीता में भी भगवान ने कहा है कि मैं वृत्त और अनुगम तन में प्रवेश करके नई दुनिया की स्थापना कराता हूं।
तो फिर
क्या हुआ प्रकाश?
अब दादा का मन बार बार परमपिता परमात्मा शिव के साथ जुटने लगा। मरण चिंतन में ही लगे रहने लगे। एक बार दादा कश्मीर में एकांत और साधना के लिए गए। वहाँ एक दिन वे अपने मित्र के गार्डन में बैठे हुए थे कि अचानक उन्हें साक्षात्कार हो गया।
जैसे रात है जैसे दिन और झांबी जैसी रात है जाओगे राधा बुरी ऐसा मौसम है खुशी के फुहारे मैं सुंदर राज कुंवर बन के रास करते हैं मिल सारे
राधा तुझे
हो जैसे मिलता इशारा है जाओगे राधा बुरी ऐसा मौसम है ऐसा मौसम है ऐसा मौसम है ऐसा मौसम है ऐसा मौसम है
कौन था ये कोई दिव्य प्रकाश था महाशक्ति थी तुमने ऐसी दुनिया बना ली है
मेरा भी इस नर्क से दुनिया से जी उठ गया है अच्छा प्रकाश जी इन सब साक्षात्कार के बाद क्या हुआ
कुछ समय कष्टों में सहन करने के बाद दादा श्री हैदराबाद वापस आए वहाँ दादा के माध्यम से स्वयं परम पिता श्री गीता ज्ञान सुनाने लगे वहाँ ओम की धुन चलती और बाबा की व्यक्ति धुन पर भी चलती वो ध्यान और साक्षात्कार में चले जाते हैं
क्या दादा के पास सत्संग में आने वालों में भी साक्षात्कार होने लगे क्या अद्भुत बात है
ये भाग भाग कर दादा के पास ओम होने लगे लेकिन दादा को समझते थे कि यह साक्षात्कार मैं नहीं परंतु परमात्मा शुरू कर रही हूँ। ऐसे करीबन 300-400 महीने दादा के साथ आकर एक महीने में ही रहने लगे। इतने सारे लोगों का रहने का और खाने पीने का इंतजाम कैसे हुआ? परमपिता परमात्मा की आज्ञा अनुसार बाबा ने ज्ञान का कलश माताएं और बहनों के ऊपर रखा। अम्मा बाबा ने 8-10 माताओं और कन्याओं की एक समिति बनाई। 17 फरवरी 1938 के दिन अपनी सारी सावध जंगल लेकर बाबा ने उस समिति के नाम कर दी, जिससे सभी का निर्वाह होने लगा। पूरे जीवन में कठिन परिश्रम से बाबा ने जो कुछ अर्जित किया था वह क्षण भर में दे दिया और अपने मन को शिव के स्मरण में लगा दिया।
कितनी ऊंची और सर्वोत्तम सेवा भावना है विश्व के प्रति, लेकिन बाबा ने बहनों द्वारा यह कार्य प्रारंभ क्यों किया?
क्योंकि परमात्मा का यह संदेश था कि यह विश्व का उद्धार ये माताएं और कन्याओं के द्वारा ही होना है। विश्व को नई दुनिया बनाने में माताएं और कन्याएं ही निमित्त बनेगी। बाबा के लिए यह कार्य कठिन था क्योंकि उस समय के समाज में स्त्रियों को अबला और भूख का साधन माना जाता था, लेकिन परमात्मा ने सहज करा दिया, जो कि आज आप देख सकते हैं।
राम, बाबा ने नारी के उद्धार का इतना बड़ा कार्य किया।
सबको स्वर्ग के लायक बनाने के लिए बाबा ने आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया और कहा राजयोगी बनो, पवित्र बनो। बाबा ने सबको गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कमल पुष्प समान पवित्र जीवन जीना सिखाया।
हाँ, तो बिल्कुल सच है कि सबको पापों से मुक्त कराकर पवित्र करने का कार्य स्वयं भगवान ही कर सकते हैं और किसी का ये कार्य नहीं।
हे प्रभु,
हे शिव शंभु, आपकी लीला अपरंपार है।
प्रभु,
आपने इस तरह पर आकर संसार को विकार के अंधकारों से मुक्त कराने का
इतना भगीरथ कार्य किया,
पर मुझे उसका तनिक भी पता नहीं था।
प्रभु, मैंने तो अपना सारा जीवन हल्ले के मुनाफे के लिए लगा दिया, लेकिन अब मुझे पता चला कि सचमुच साथ आने वाली सच्ची कमाई तो वह ज्ञान और गुण है।
प्रकाश जी, सचमुच आपने हम सबका जीवन संभवित दुखों से बचा लिया है, हमारा भाग्य बना दिया है। हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करेंगे प्रकाश जी? आपका ये उपकार प्रकाश जी हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे।
उपकार तो हमें शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का मानना चाहिए, जिन्होंने मेरा जीवन धन्य बना दिया।
सचमुच प्रभु, आप ही दुनिया के सच्चे सेवक बनकर सबके कल्याण का काम अभी भी कर रहे हो। और हम तो हमारी नेता गरीब मस्त थे।
अच्छा, तो सचमुच स्वर्ग होने वाला है और मुझे भी स्वर्ग में आने लायक बनाया।
आप सभी भी राजयोग के अभ्यास द्वारा अपने आप को पवित्र बनाकर नई दुनिया में जाने के अधिकारी जरूर बना सकते हैं। आज लाखों आत्माएं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी अपने आप को पवित्र बनाकर इस राह पर चल रहे हैं। ये है दादी प्रकाश मणि जी। पिछले 33 सालों से दादी जी इस बेहद केशवरी विश्वविद्यालय का सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं। विश्व शांति के उनके प्रयासों को यूनाइटेड नेशंस ने एक अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पीस प्राइज और अनेक पुरस्कारों से नवाजा है। कल हम सभी उनसे मिलेंगे।
शांति। हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हम कहते ही हैं कि यह सृष्टि वसुधैव कुटुंबकम है, जहां हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो हम आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं, इसीलिए कहा गया है आत्मा आत्मा भाई भाई। भी हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, और वास्तव में ये आत्मा आत्मा भाई भाई, क्योंकि हम एक पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा और परमात्मा में समानता भी बहुत है, लेकिन अंतर भी बहुत है। हम आत्माएं जिस प्रकार एक बच्चा अपने पिता को याद करता है, वैसे हम आत्माएं भी परमात्मा को याद करती हैं। जब दुखी होती है तब हम उस भगवान को बुलाते हैं, हम कहते हैं हे प्रभु हमें दुख से छुड़ाओ, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो, हमें दया करो। अर्थात आत्मा उस परमात्मा को याद करती है। परमात्मा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। वास्तव में हम सभी आत्माएं शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। लेकिन हम आत्माएं भूल जाती है कि हमारा ये स्वरूप है, इसलिए दुखी और अशांत हो जाती है। तब परम पिता परमात्मा को याद करते हैं कि हे प्रभु शांति दो। अब परमात्मा की स्मृति से आत्मा को शांति की अनुभूति होती है।
ओम शांति दादी जी, बाबा के घर में आए हुए बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं।
ओम शांति।
ओम शांति।
आज बहुत शुभ दिन है, मधुबन पांडव भवन में पहुंचे हो, इसलिए पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सभी को दादी शुभ राय देती कि इस समय हरेक मानव मात्र को इस योग की, जिसको हम सहज राजयोग कहते, उसकी जरूरत है, जिससे आप सिर्फ तीन शब्द जान लेंगे। एक तो इस शरीर के बीच मैं आत्मा क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आती। दूसरा, हम हर एक आत्मा का सर्व का पिता परमात्मा है, जो परमात्मा पिता को सभी याद करते, परंतु वो बाप है हमारा, ऐसे परमात्मा पिता से कैसे हमें शांति सुख पवित्रता आनंद मिलता है, वह सब आप अनुभव करेंगे। इसलिए ये योग ही वास्तव में स्वर्ग का, यहाँ भारत में लाने का, विश्व में लाने का शुभ साधन है। ऐसा राजयोग आप हर एक भी अगर इसको स्टडी करो तो आप लोगों का बहुत ये जीवन 21 जन्मों के लिए सफल हो जाए। ओम शांति। ओम शांति।
दादी जी, मुझे तो आज भी आश्चर्य हो रहा है, आप कितनी उम्र में एक महिला होते हुए 80 देशों में 6000 से भी ज्यादा सेवा केंद्रों का संचालन किस तरह से कर रही है। दादी जी, सचमुच आप विश्व की श्रेष्ठ प्रशासक सका है।
हाँ दादी जी, आपकी तेजस्वी प्रतिभा या परिसर और प्रकाश जी की बातें सुनकर मुझे यह प्रतीत होता है कि आध्यात्मिक ज्ञान है सच्चा अविनाशी धन है। इसकी प्राप्ति होने से अन्य सब कुछ स्वतः प्राप्त हो जाता है।
ओम शांति दादी जी। मैं तो मेरी जवानी यूं ही जी रहा था, लेकिन मैं भी सोचता हूं कि मैं भी प्रकाश जी की तरह राजयोग सीखकर ब्रह्मा कुमार बन जाऊं।
ओम शांति दादी जी। दादी जी मैं भी यही सोच रहा हूं कि अगर हम युवानी में ही आध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाए तो हमारी पर्सनालिटी में अदम्य आकर्षण आ जाता है जिसे हम ऊंचा लक्ष्य सहज पा सकते हैं। दादी जी,
दादी जी लोग मुझे मुड़िया कहते हैं। मेरा परिवार तो सोचता है कि मैं जल्दी से जल्दी ऊपर चली जाऊं, लेकिन मैंने वहां से देखा देश प्रदेश के लड़के लड़कियां आपको कितना प्यार करते हैं, आपको दादी जी कहके बुलाते हैं। हमेशा आपका प्यार हमारे साथ रहे, बस इतना मैं चाहती हूँ दादी माँ।
ओम शांति, ओम शांति।
ना रहा ठिकाना, कुबेर का मिल गया खजाना।
प्यार प्रभु का बुझा रहा जो जन्म जन्म की प्यास थी हमें मिल गया प्राणों से प्यारा। अब तक जिसकी तलाश थी
यही है जिसकी तलाश थी
यही है जिसकी तलाश थी।
सारा मिल जाता है हर दिल ये झूम जाता है। था मिल गया है भगवान तेरा शुक्रिया है।
लिखी भैया ने नैया दुनिया हो गई निराश की हमें मिल गया प्राणों से प्यारा। अब तक जिसकी तलाश थी
यही है जिसकी तलाश थी
यही है जिसकी तलाश थी।
मिल जाता है हर दिल ये झूम जाता है।
मिल गया प्राणों से प्यारा अब तक जिसकी तलाश थी
यही है जिसकी तलाश थी
यही है जिसकी तलाश थी
यही है जिसकी तलाश थी यही है जिसकी तलाश थी यही है जिसकी तलाश थी।
Thank you. आप भी राजयोग द्वारा इस धरती पर बसने वाली नई दुनिया अर्थात स्वर्ग में अपना स्थान ले सकते हैं। ओम शांति।